हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाए गोसाए करी चरण वंदन, इच्छाए गोसाए छाय गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण, जहाँ हैते विघ्न, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण, जहाँ हैते छाई गोसाई जर मुई कर दास, छाई गोसाई छाई गोसाई कर मुई कर दास, छाई गोसाई जर दस बार पद रेणु मोर पंच ग्रास, दस बार पंच दस बार पद रेणु मोर पंच ग्रास, दस बार पद पदर चरण से भक्त सनेवा, पदर चरण से भक्त सनेवा, जन्म जन्म होए अभिला, जन्म जन्म होए अभिला, तादेर चरण से भक्त सनेवा, तादेर चरण से भक्त सनेवा, जन्म जन्म होए अखिला छाय गोसाई जबे ब्रजे कोइलाबा छाय गोसाई जबे ब्रजे छाय गोसाई जबे ब्रजे कोइलाबा छाय गोसाई राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश राधा कृष्ण राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंद बोल हरि भज वृंदावन आनंद आनंद बोल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पादे मजाई अमान श्री गुरु वैष्णव पादे मजा श्री गुरु वैष्णव पादे मजाई अमान आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पादे मजाई अमान श्री गुरु वैष्णव पादे मजाई अमान आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पादे मजाई अमान श्री गुरु वैष्णव पादे मजाई अमान श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय निधाय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः रामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वृंदावन में कृष्ण पर जिन असुरों ने आक्रमण किया उनको कृष्ण ने कैसे मारा और साथ ही साथ कौन सा अनर्थ वो असुर हमारे सामने प्रकट करते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये कथा हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तृणावर्त के बारे में कि किस प्रकार तृणावर्त का वध भगवान ने किया। अपने पूर्व जन्म में तृणावर्त एक राजा थे, भगवान के भक्त थे, यज्ञ किया करते और फिर दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण वो एक असुर बने। लेकिन क्योंकि दुर्वासा मुनि ने उनके ऊपर कृपा की, उनके पश्चाताप को देखकर उनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि उन्होंने एक अपराध किया और दुर्वासा मुनि ने उनके पश्चाताप को देखते हुए उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा की और वो कृपा थी उन्हें भगवत प्राप्ति करवाई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श और फिर भगवत धाम की प्राप्ति। तो इस प्रकार से सहस्राक्ष जो अपने पूर्व जन्म में, जो अपने अगले जन्म में असुर बने, वही तृणावर्त के रूप में आए। हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी कि तृणावर्त प्रतिनिधित्व करते हैं ज्ञान से उत्पन्न मिथ्या अहंकार का, जिससे वाद विवाद उत्पन्न होता है। फिर लीला की चर्चा हुई थी कि किस तरह यशोदा माता कृष्ण को लेकर बैठी थी और कृष्ण अचानक भारी हो गए, क्योंकि कृष्ण को पता था कि तृणावर्त आने वाले हैं, और फिर यशोदा माता ने उन्हें नीचे रख दिया, कृष्ण बैठ गए। वैसे आचार्यों ने एक टिप्पणी की है इस पर कि क्यों कृष्ण जमीन पर बैठ गए। वो बताते हैं कि दरअसल वो तैयार हो गए थे तृणावर्त का स्वागत करने के लिए। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि अतिथि का स्वागत करना चाहिए, तो कृष्ण ने इस लीला में दिखलाया, आचार्य टिप्पणी करते हैं कि व्यक्ति को अतिथि का स्वागत करना चाहिए, भले ही वो दुश्मन क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो। कल एक प्रश्न पूछा था कि आने वाला अतिथि अगर सही हो या ना हो तो क्या करें, उसके बुरे भाव हो। तो आचार्य समझाते हैं कि अगर शत्रु भी हो तो भी उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, जब तक वो शत्रुता दिखलाए नहीं। और फिर अगर वो शत्रुता दिखलाने लगे, ऐसे भावों को प्रकट करे, आपके ऊपर आक्रमण करे, तब फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देनी चाहिए, जैसे कृष्ण ने किया। तो कृष्ण स्वागत करने के लिए बैठ गए थे, तृणावर्त आए, और फिर कृष्ण को लेकर कितने ऊपर गए थे, हाँ 8 लाख मील की ऊंचाई पर चले गए। और कितने समय तक रहे वहां पर कृष्ण,
1 घंटा
तक वो सैर कर रहे थे हवा में विदाउट टिकट। और इस तरह से 1 घंटा ऊपर रहकर 8 लाख मील की ऊंचाई पर कृष्ण ने गला दबा दिया तृणावर्त का, और फिर तृणावर्त वहां से नीचे गिरे। सारा जो उनके शरीर के अंग थे वो जैसे आंखें बाहर निकल गईं, और इत्यादि वर्णन किया, और इस प्रकार से तृणावर्त का वध हुआ। फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये तृणावर्त का जो वध भगवान ने किया, ये हमारे हृदय में कौन से अनर्थ को प्रकट करता है। तो तृणावर्त प्रतिनिधित्व करता है ज्ञान से उत्पन्न मिथ्या अहंकार का, जिससे वाद विवाद उत्पन्न होता है, और फिर ये वाद विवाद ऐसे विवादों को जन्म देता है जो शुद्ध भक्ति के विपरीत हैं। हम लोगों ने कल इस विषय में भी चर्चा की थी, और साथ ही साथ ये आसुरी तथा पापी दर्शनों का उगम स्थान है। जैसे हम लोग इन वाद विवादों में पढ़ते हैं अपने मिथ्या अहंकार के कारण, तो हम लोग पापी और ऐसे दर्शन को जन्म देते हैं जो भक्ति के विपरीत हैं, जो हमें भगवान की ओर नहीं ले जाते, जो हमें कुछ भौतिक भोगों तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति तक ले जाते हैं, निर्विशेषवादी मुक्ति। कई समाजों में, कई धर्मों में इस मुक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। कई ऐसे समाज हैं जो बहुत से अच्छे कार्य करते हैं, दान धर्म करते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, केवल इसलिए कि उनका ये मानना है कि इसके द्वारा हम शुद्ध हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम, जरा पर्दा बंद कीजिएगा थोड़ा पीछे से, एक समय ऐसा आएगा कि जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, और फिर पूर्ण रूप से शुद्ध होकर हम ब्रह्मत्व की प्राप्ति करेंगे, अर्थात हम ब्रह्म बन जाएंगे या फिर हम भगवान बन जाएंगे। तो भगवान बनने के लिए वो अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को दान करते हैं, शुद्धिकरण के लिए दान करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि हमने जो भी पाप पूर्व में किए हैं उसी के कारण हमें ये शरीर मिला है, लेकिन अब हम शुद्धिकरण कर रहे हैं और अब हम शुद्ध होकर फिर से भगवान बन जाएंगे। तो ये उनकी धारणा है, कि भगवान भी अशुद्ध होते हैं और फिर शुद्धिकरण करके, जैसे कि कृष्ण, वो कहते हैं कि कृष्ण ने इतना बड़ा युद्ध करवाया, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था लेकिन कृष्ण ने जबरदस्ती युद्ध करवाया और इसी कारण से आज भी वो नरक में कष्ट भोग रहे हैं। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने आप को शुद्ध कर लेंगे और फिर वो जैसे हम भगवान बनेंगे वैसे ही वो भी भगवान बन जाएंगे। तो खैर, एक दृष्टि से कम कृष्ण को भगवान मानते हैं, या आज नहीं तो कल वो बनने वाले हैं, लेकिन गलती ये है कि अपने आप को भी भगवान मानते हैं। तो ऐसा समाज, ऐसा धर्म, ये पापी समाज है, ये पापी धर्म है। क्यों पाप कर रहा है? क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्ति नहीं कर रहा, और भगवान कृष्ण भक्तों की भक्ति से या उनकी नम्रता से प्रसन्न होते हैं और तब इस असुर का वध करते हैं। क्योंकि ये असुर है अहंकार, जैसे वो ऊंचा ऊंचा 800,000 मील 800,000 मील ऊपर चला गया, तो ऐसे ही हमारा अहंकार बढ़ता जाता है। और अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं आए तो 800,000 मील भी कम पड़ते हैं हमारे अहंकार के लिए, इतना ऊंचा हमारा अहंकार हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी विद्याओं में लगे हैं कि जिसके द्वारा वो एक ऐसा समय आएगा जहां पर इस सारे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर लेंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड को नियंत्रण करने की भावना उनके अंदर है, अर्थात अहंकार कितना ऊंचा चला गया है, 800,000 मील से भी ऊंचा चला गया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों का रक्षण करते हैं जो अपने हृदय में इस अहंकार को नहीं लाते, नम्रता का प्रदर्शन करते हैं। तो अहंकार तो हम सबके हृदय में है, फिर कैसे इस अहंकार से दूर जाया जाए, कैसे इस असुर को मारा जाए? कृष्ण असुर को मार सकते हैं, लेकिन हमें कृष्ण के पास जाकर ये बतलाना होगा कि हे कृष्ण, इस असुर को मारिए, तब तो कृष्ण मारेंगे, तब तो हृदय में आएंगे। तो कैसे हम बतला सकते हैं कृष्ण को? अपने अंदर कुछ गुण लाकर। तो इसीलिए वैष्णवों में तीन महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, जिनकी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, ताकि वो बद्ध चेतना से कृष्ण चेतना की ओर जा सकें। बद्ध चेतना का अर्थ होता है जहां पर जीव के नाम, गुण, रूप और उसके कार्यों में विरोधाभास होता है। लेकिन कृष्ण चेतना क्या है? कृष्ण चेतना है जहां पर हम ये जानते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये कृष्ण चेतना है। ये जानना कि कृष्ण के नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, इसे कृष्ण चेतना कहते हैं, इसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। पूर्ण रूप से कृष्ण के भाव में रहना या कृष्ण की भावना में रहना, इसको कृष्ण भावना भावित कहते हैं। और कृष्ण की भावना में व्यक्ति कैसे रह सकता है? जब वो अपने अंदर कुछ गुणों को उत्पन्न करता है। जब तक जीव इन गुणों को अपने अंदर नहीं लाता, तब तक वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता और तब तक हमारे हृदय से अहंकार नहीं जा सकता। तो कल हम लोग यहां पर रुके थे कि वैष्णवों के तीन महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं। दरअसल ये गुण ऐसा नहीं है कि वैष्णवों में होने चाहिए, दरअसल ये गुण वैष्णव बनाते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति में अगर ये गुण नहीं है तो उसे वैष्णव नहीं कह सकते। वैष्णव का अर्थ ही है कि ये तीन न, जो न से शुरू होने वाले शब्द हैं, ये तीन न उसमें होने चाहिए। हाँ, इसके अलावा वो भक्त होना चाहिए, इसीलिए वैष्णव के तीन गुण कह रहे हैं। नहीं तो कोई कहेगा ये तीन गुण है ठीक है, भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वैष्णव का अर्थ है भगवान के दास। तो भगवान के दास होने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो कोई ये प्रश्न कह सकता है, पूछ सकता है कि अगर वो वैसे ही वैष्णव है, भगवान का दास है, तो फिर उसे गुण को लाने की क्या आवश्यकता है? उसके अंदर तो ये गुण होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बड़े सुंदर उदाहरण से समझाते हैं कि वैष्णवों में भी अंतर होते हैं, जैसे कि कच्चा आम और पका हुआ आम। कच्चा आम भी पेड़ पर लगा होता है और पका हुआ आम भी पेड़ पर होता है, लेकिन कच्चा आम हमें वो रस नहीं देता, हमें वो स्वाद नहीं देता, लेकिन पका हुआ आम रस देता है, स्वाद देता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, भक्ति का प्रारंभ करता है, तो वो वैष्णव है, लेकिन अभी कच्चे आम की तरह है, उसको अभी भक्ति का रस नहीं आया है, कृष्ण के नाम में स्वाद नहीं आया है, इसीलिए उसको कच्चे आम की तरह माना जाता है। लेकिन अगर वो पेड़ पर लगा रहे, भक्तों के संग में रहे, जन्मे जन्मे होए एई अभिलाष, यही हमारी अभिलाषा, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि भक्त सने वास। और अगर हम इस पेड़ पर लगे रहें, ये पेड़ क्या है, चैतन्य महाप्रभु इसको समझाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो एक माली है, और कैसे माली हैं, वो भक्ति के एक वृक्ष को लगा रहे हैं, और इतना ही नहीं उसको संभाल भी रहे हैं, और उसके फल देने के लिए भी तैयार है, केवल हमें उसको जाकर लेना है, पात्रता दिखलानी है। और क्या पात्रता है, श्रद्धा। नित्यानंद प्रभु इस नाम को बांटते हैं, सबसे बड़े वितरक हैं इस नाम के बाजार में, लेकिन वो एक ही चीज मांगते हैं, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। केवल थोड़ी सी श्रद्धा लेकर अगर कोई मंदिर आ जाता है, भगवान के भक्तों के मध्य आता है, तब फिर उसके लिए भक्ति का मार्ग खुल जाता है, उसके लिए गोलोक वृंदावन के द्वार खुल जाते हैं। ये भक्तों की शक्ति है। आपको स्मरण होगा जब हम लोगों ने ये प्रारंभ किया था सत्र, तो उसमें हमने चैतन्य महाप्रभु की एक बड़ी सुंदर लीला, प्राकट्य लीला का वर्णन किया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु लगुना बीच में प्रकट हुए एक जीव का उद्धार करने के लिए। हाँ, उन्होंने एक जीव का नहीं, कई जीवों का उद्धार किया, लेकिन विशेष करके वो व्यक्ति मानते थे कि केवल मेरा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वो प्रकट होते हैं, लेकिन हमें अपनी गंभीरता चैतन्य महाप्रभु को दिखलानी है, कृष्ण को दिखलानी है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में क्या अंतर है, तो आप क्या उत्तर देंगे, वो अंतर है या नहीं है? थोड़े जोर से बोलिए, हमें सुनाई नहीं दे रही। है भी और नहीं है। कैसे अंतर, कैसे नहीं है? दोनों कृष्ण हैं, दोनों भगवान हैं। और अंतर कैसे है, थोड़ा जोर से बोलिए, इधर से। भक्ति का प्रचार करते हैं, कृष्ण ने भी भक्ति का प्रचार किया, भगवद गीता सारी भक्ति का ही प्रचार है। राधा भाव में है। तो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में यह अंतर है कि उनका भाव अलग है। वही कृष्ण है जिन्होंने भगवद गीता कही, दरअसल शास्त्रों का नियम है कि जब भी कोई अच्छी बात होने वाली हो तो पहले आवाज होती है जोर से, आरती के पहले शंख बजता है ना। तो अभी कृष्ण का नाम लिया और शंख नहीं बजाया था, इसीलिए भगवान ने व्यवस्था कर दी, लेकिन काफी लंबा शंख बजा दिया। तो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में भाव का अंतर है। वही कृष्ण हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। और श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त, अर्थात एक भक्त का भाव लेकर आए हैं वही कृष्ण। और इसीलिए अगर हम उनको अपनी गंभीरता दिखलाएं, हम ये दिखलाएं कि हम तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए जो मार्ग वो हमें दिखला रहे हैं, जो भक्ति वो हमें प्रदान कर रहे हैं, तब फिर हमारे अंदर के जितने भी असुर हैं उनका वो वध करेंगे। तो तृणावर्त ये अहंकार का सूचक है, वो भी मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न अहंकार। तो इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं? अपने अंदर ये तीन महत्वपूर्ण गुणों को लाकर। सबसे पहला गुण है निस्वार्थ भावना। हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा गुण है नम्रता और तीसरा निर्भयता। ये तीन गुण बड़े आवश्यक हैं भक्तों के अंदर, क्योंकि हम लोग चर्चा सब आप जैसे महान भक्तों के बीच में बैठकर कर रहे हैं, इसीलिए इन विषयों पर चर्चा करना आवश्यक है ताकि हम लोग भक्ति करते करते भूल नहीं जाएं कि भक्ति का अर्थ है हृदय परिवर्तन, और हृदय परिवर्तन का अर्थ है इन गुणों को लाना। क्योंकि अगर हम इन तीन गुणों को देखें तो भौतिकवादी व्यक्ति के विपरीत गुण हैं ये। कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति निस्वार्थ नहीं होता, थोड़ा बहुत स्वार्थ रखता है। कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति नम्र नहीं हो सकता, क्योंकि असली नम्रता को नहीं समझता। हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कोई ये कह सकते नहीं, वो व्यक्ति है वो भक्त नहीं है लेकिन बड़ा नम्र है। नहीं, सही नम्रता क्या है इसको जानना चाहिए। और फिर जब तक कोई वैष्णव नहीं है वो निर्भय नहीं हो सकता, क्योंकि सदैव इस जगत में व्यक्ति भयभीत रहता है, हमेशा भयभीत। कभी अपने संपत्ति के खो जाने का भय, कभी अपने प्रियजनों के खो जाने का भय, कभी अपनी मृत्यु का भय। कितने सारे भय हैं जीव को, और इन भयों के बीच में भयभीत होकर वो बड़े आनंद से रहने का प्रयास करता है। कितनी बड़ी मूर्खता है जीव की। चारों तरफ भय है। अगर वो घर से पांव बाहर निकालता है उसको पता है कि वो शायद वापस आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी माया का आवरण इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि वो भूल जाता है, योजनाएं बनाता है आगे आने वाले जीवन की, अपने रिटायरमेंट की, कि मैं जब सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। ये नहीं पता कि बूढ़ा होगा या नहीं। लोग कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने बताया है। तो जरूरी नहीं है कि जरा या जो बुढ़ापा है या जो रोग है, ये जरूरी नहीं है कि आपको कष्ट दें, क्योंकि हो सकता है ये आपको आए ही नहीं, उसके पहले ही मृत्यु हो जाए। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए, हमेशा व्यक्ति भयभीत रहता है। तो केवल भक्त वैष्णव ये निर्भय रह सकते हैं। तो इसीलिए आइए हम लोग देखें कि भक्ति की दृष्टि से निस्वार्थ भावना और नम्रता और निर्भयता, इसको कैसे अपने हृदय में लाना चाहिए। निस्वार्थ भावना, ये सबसे पहला गुण एक वैष्णव में होना चाहिए, बड़ा आवश्यक है। अब अगर कोई हमसे कहे कि आपको निस्वार्थ हो जाना चाहिए, आपके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपनी कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए, केवल दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए, तो ऐसा लग सकता है कि ये तो हमें कहा जा रहा है कि जैसे हम अपने अस्तित्व को छोड़कर एक पायदान के समान हो जाएं। पायदान जानते हैं आप लोग, हम लोग दरवाजे पर रखते हैं पांव पोछने के लिए, उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हमारा अहंकार हमें अंदर से पुकारेगा, जब आपसे कहा जाएगा कि भाई आपको निस्वार्थ बनना है, आप भक्त हैं, इतने सालों से जप कर रहे हैं लेकिन अभी तक निस्वार्थी नहीं हुए, स्वार्थ को पकड़ कर रखे हैं, छोड़ दीजिए स्वार्थ को, तो अहंकार अंदर से चिल्लाएगा नहीं, छोड़ना नहीं है। अरे अगर स्वार्थ को छोड़ दिया तो लोग तुम्हें पायदान बना देंगे, सही है कि नहीं? एक बार एक भक्त ने नए नए वो भक्त थे, तो हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे कि भक्ति में कैसे रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन भक्ति में थोड़ा बहुत हमें डट कर भी रहना चाहिए। हमने कहा क्यों डट कर रहना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर भक्तों में आप विरोध करते हैं तो ये गलत है। हाँ, आप विरोध करना है तो ऐसे लोगों का कीजिए जो भक्ति के विरुद्ध हैं, जो भगवान के विरुद्ध हैं, जो भक्तों के विरुद्ध कहते हैं। लेकिन अगर कोई आपके विरुद्ध कुछ कहता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो लोग हमारा गलत फायदा उठाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अहंकार अंदर से चिल्लाया कि अरे नहीं, ऐसा नहीं बनना है, अगर ऐसे बन गए तो आपको लोग पायदान बना देंगे। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि निस्वार्थ भावना क्या है। निस्वार्थ भावना अपने अस्तित्व को खोना नहीं है, क्योंकि हमारे अस्तित्व को तो हम खोए हुए हैं और उस अस्तित्व को पुनः प्राप्त करना है, जो कि हमारा शुद्ध अस्तित्व है। यह निस्वार्थ भावना है। कैसे? स्वार्थ कब आता है? स्वार्थ तब आता है जब हम अपने इस शरीर को, इस भौतिक अस्तित्व को सत्य मानते हैं, स्वप्न नहीं मानते। तभी तो हमें यह लगता है कि हमारा कुछ स्वार्थ होना चाहिए। स्वअर्थ, स्वअर्थ मतलब शरीर के लिए थोड़ा बहुत कार्य, अर्थ, क्योंकि हम शरीर को स्व मानते हैं। इसीलिए जब ऐसी भावनाएं या ऐसे निर्देश हमें आचार्यों के द्वारा दिए जाते हैं कि हमें निस्वार्थ होना है, तो अचानक अहंकार कहता है नहीं नहीं, क्योंकि अहंकार जानता है अगर ये व्यक्ति निस्वार्थ भावना की ओर चला गया, स्व अर्थ को छोड़ दिया, निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ, स्व अर्थ से दूर जाना, तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो ये जान लेता है कि अगर ये व्यक्ति निस्वार्थ हो गया तो मेरा वश में अभी जो ये है वो चला जाएगा, ये भूल जाएगा मुझे, ये छोड़ देगा मुझे। तो इसीलिए मिथ्या अहंकार अंदर से कहता है कि नहीं, तुम अपने अस्तित्व को पकड़ कर रखो, छोड़ो नहीं इसको। तो इसीलिए सबसे पहली बात हमें यह सीखनी होती है कि निस्वार्थ होने से, हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि निस्वार्थ होना क्या है, ये तो हम लोग शब्द का अर्थ जानते हैं, निस्वार्थ होना अर्थात दूसरों के लिए कार्य करना। लेकिन हम क्यों नहीं हो पाते हैं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर इसको समझेंगे तो हम प्रयास करेंगे कम से कम निस्वार्थ होने का। ये थोड़े गंभीर विषय हैं, भक्तों के लिए हैं, समझना आवश्यक है। तो निस्वार्थ होना अर्थात अपने अस्तित्व को खो देना नहीं, शुद्ध अस्तित्व को पाना है। ये असली निस्वार्थ है, अर्थात इस भौतिक जगत के स्व अर्थ से, इस शरीर के स्व अर्थ से दूर जाना, परे जाना, आत्मा के अर्थ, स्व अर्थ को पाना, शुद्ध स्थिति में जाना। आप लोग ये इस स्थिति को बार बार प्रयास कीजिए याद करने का कि हम सब आत्मा हैं, एक शुद्ध जगत में हैं, भगवान के संग में हैं, लेकिन अचानक हम यहां इस जगत में आते हैं और एक स्वप्न के समान हम इस जगत में रहते हैं, कष्टों को भोगते हैं और अपने शुद्ध अस्तित्व की ओर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन निस्वार्थ भावना का अर्थ अपने शुद्ध अस्तित्व की ओर जाना है। निस्वार्थ भावना का अर्थ अपनी आवश्यकताओं को त्यागना नहीं, परंतु आत्मा की शाश्वत व शुद्ध इच्छाओं से बदलना है। कभी कभी अगर हम ये सोचे कि हमें निस्वार्थी बनना है तो हृदय में ये बात आती है, क्या इसका अर्थ है अपनी सारी आवश्यकताओं को छोड़ दे, हमारी ये आवश्यकता है, हमें कुछ रहने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, हमें कुछ भोग करने के लिए चाहिए, और निस्वार्थ मतलब सब कुछ त्याग दें, आवश्यकताएं समाप्त कर दें, हमारी कोई आवश्यकताएं ही नहीं है, ऐसे कैसे हम रह सकेंगे? तो ऐसा नहीं है। निस्वार्थ भावना का अर्थ है कि हम अपनी आवश्यकताओं को त्याग नहीं रहे हैं, बल्कि केवल उनको बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? शुद्ध इच्छाओं में। जैसे उदाहरण के लिए, हमारी आवश्यकता है कि हमें शरीर को भोजन देना है। अगर शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो उसको पोषण नहीं मिलेगा और शरीर चल नहीं पाएगा। तो इस आवश्यकताओं को क्या त्याग देना, यह निस्वार्थ नहीं है? क्योंकि आपने अगर खाना बंद कर दिया तो आपका शरीर नहीं चलेगा, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? इसको बदलना है, शुद्ध चेतना की ओर ले जाना है। इसी इच्छा को, इसी आवश्यकता को, खाने की इच्छा को केवल शुद्ध करना है, अर्थात उतना ग्रहण करना है जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि भक्तों को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एक स्थान पर तो वो लिखते हैं कि नवदीक्षित भक्तों को गले तक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इतना खाना चाहिए। लेकिन फिर जब आगे बढ़ जाएं भक्ति में तो बहुत ज्यादा प्रसाद खाना भी ये इंद्रिय तृप्ति हो जाती है। क्यों इंद्रिय तृप्ति हो जाती है? वो तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद शुद्ध है, ये सही है, लेकिन हम उस भाव से उसको ग्रहण नहीं करते हैं। दूषण उसमें भाव का आ जाता है। हम प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम उसको कृष्ण समझ कर लेते हैं, कृष्ण से अभिन्न मानते हैं, ये मानते हैं कि ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि ये राइस है, ये दाल है, ये शीरा है, ये गुलाब जामुन है, हमें एक ही मिला, दो नहीं मिले, स्वीट राइस थोड़ा मिला। तो भावना क्या है? स्वीट राइस। भावना क्या है? गुलाब जामुन। भावना प्रसाद नहीं है, भावना कृष्ण नहीं है। तो इसलिए ऐसा प्रसाद ग्रहण करना भी इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। तो इसलिए ऐसी आवश्यकताओं को बदलना चाहिए। हमारी आवश्यकता कितनी है? इस शरीर को चलाने के लिए कितनी आवश्यकता है? बस उतना खाना, और वो भी केवल कृष्ण प्रसाद। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरह हम अपनी आवश्यकताओं को बदले और उससे निस्वार्थी बने। निस्वार्थ रहना अर्थात जीवन के उद्देश्यों को त्यागना नहीं, परंतु दिव्य उद्देश्यों से जोड़ना है। कोई कह सकता है, मैंने इतने उद्देश्य जीवन में रखे थे, क्या उन सबको त्याग दूं, निस्वार्थी बन जाऊं? तो नहीं, जीवन के उद्देश्यों को त्यागना नहीं है, लेकिन उन उद्देश्यों को दिव्य उद्देश्य बनाना है। जैसे किसी का उद्देश्य जीवन में हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति बनूंगा कि सारे जगत मुझे जानेगा। तो अगर ऐसी इच्छा है तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित है उस व्यक्ति का गुणगान सारा जगत, केवल यही जगत नहीं, तीनों लोक, सारे ब्रह्मांड करते हैं। कभी कभी हम लोग कथा पढ़ते हैं पुराणों में, तो ऐसी कथा होती है जो लगता है हमने तो कभी सुनी नहीं, कहीं और लिखा नहीं। तो इसका कारण होता है कि हो सकता है वो किसी और कल्प में हुई हो या किसी और ब्रह्मांड में हुई हो, अर्थात कहीं भी कृष्ण से जो जुड़ा उसका गुणगान होता है। श्रीमद् भागवत केवल भक्तों का गुणगान है और वो सब कृष्ण से जुड़े हैं। तो इसलिए ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करना जो हमें अपने जीवन में सही मार्ग दिखलाएं। निस्वार्थ भावना का अर्थ है एक ऐसी शक्ति जो हमें संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ रहता है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो बद्ध रहता है, क्योंकि स्वार्थ उसको बांध कर रखता है। स्वार्थ एक ऐसी शक्ति है जो बद्ध करती है, और निस्वार्थ एक ऐसी शक्ति है जो मुक्त करती है। इसको हमें अपने मन में, अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए। जब तक व्यक्ति स्वार्थी रहेगा वो बद्ध रहेगा, चाहे वो कितना ही भक्ति क्यों ना कर ले, लेकिन अगर स्वार्थ है हृदय में, स्वार्थ अर्थात भौतिक दृष्टि से, तो ऐसा स्वार्थ हमें केवल बद्ध करता है, लेकिन निस्वार्थ भावना हमें मुक्त करती है, स्वतंत्र करती है, संपूर्ण स्वतंत्रता दिलाती है। ऐसी स्वतंत्रता जो हम इस जगत में कभी अनुभव नहीं कर सकते। भारत एक समय में गुलाम था और फिर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के सारे नागरिक अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे, स्वतंत्रता दिवस मनाया, अभी आने वाला है अगले हफ्ते, झंडे फहराते हैं, साल में एक ही दिन एक गीत गाते हैं, उनको उसी समय अपनी माँ याद आती है, धरती हमारी माता है, वंदे मातरम। लेकिन क्या हमें ये स्वतंत्रता मिली है? देह की दृष्टि से भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, मन की दृष्टि से भी स्वतंत्र नहीं हैं, और आत्मा तो बद्ध ही है, तो फिर कैसी स्वतंत्रता? इसीलिए संपूर्ण स्वतंत्रता वो है जब हम अपने स्वार्थ को त्यागे। तो ऐसे ये निस्वार्थ भावना है, और इसका फल क्या होता है, क्यों इसे ग्रहण करना चाहिए, क्यों लानी चाहिए ये भावना? निस्वार्थ भावना क्या है? निस्वार्थ भावना अर्थात दूसरों के लिए कार्य करना, अपने लिए कुछ नहीं। ये भक्तों में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, और जो भी वैष्णव हैं उनमें ये गुण पाया जाता है कि वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोचते। वो प्रयास करते हैं कि अन्य भक्तों के लिए सारी सुविधाएं हों, लेकिन मेरे लिए तपस्या। ये भक्तों का गुण है, ये निस्वार्थ भावना। अपने लिए कोई चीज की कामना नहीं करना, जो चीज भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हमें मिले उसको स्वीकारना। वैसे ये भावना लाना बड़ा कठिन है, लेकिन आप सोचिए कि व्यक्ति केवल ये भावना लाने से क्या क्या नहीं कर सकता, कितना प्रसन्न रह सकता है व्यक्ति, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए कार्य ही नहीं करना है, अपने लिए कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। हमें कष्ट कब होता है? हम इच्छा करते हैं मुझे कुछ मिले, किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा, वो नहीं मिलता है, कष्ट होता है। हम इच्छा करते हैं कोई धन मिले, कोई यश मिले, नहीं मिलता, हमें कष्ट होता है। हम इच्छा करते हैं हमें आदर सम्मान मिले, हमें नहीं मिलता, हमें कष्ट होता है। लेकिन अगर इच्छा ही ना हो, अपने लिए कोई इच्छा नहीं, तो फिर यह स्वाभाविक है कि हमें कष्ट भी नहीं होगा। इसलिए निस्वार्थ भावना का फल सबसे पहला होता है, हम अपनी इंद्रियों को संयम में रख पाते हैं, क्योंकि इंद्रियां सदैव कुछ मांगती रहती हैं। हमारी सारी इंद्रियां ये एक वेग हैं, इससे वेग आते हैं, और ये इंद्रियों के जो तृष्णा है, जो वासना है, इसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति पापपूर्ण कार्य करता है या इस जगत में कार्य करता है, और इस जगत में पाप और पुण्य ये दोनों बांधते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम सुख दुख की कामना मत करो, लाभ हो लाभ हो, लाभ या लाभ ना हानि इसकी चिंता ना करो, जय हो तुम्हारी, विजय हो या तुम मरो इसकी चिंता मत करो, तुम युद्ध करो बस। भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये निस्वार्थ भावना है, अपने लिए कोई चिंता मत करो, तुम मेरे लिए कार्य करो। ऑफ कोर्स निस्वार्थ भावना की पराकाष्ठा है कि केवल भगवान के लिए कार्य करना। तो निस्वार्थ भावना से हम इंद्रिय संयम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो अलग अलग चीजें हमें मांगती हैं हमसे, जब हम ये भावना अपने हृदय में ले आएंगे दृढ़ता से कि हमें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, तो स्वाभाविक है कि अपने आप इंद्रियां संयम में आ जाती हैं। दूसरा, द्वेष भावना से मुक्ति होती है। द्वेष व्यक्ति कब करता है? द्वेष हम एक दूसरे से तब करते हैं जब हम दूसरे को जो चीज मिली है वही चीज हम पाना चाहते हैं, या जैसे कोई दूसरा प्रगति कर रहा है तो हमें बड़ा कष्ट हो जाता है कि अरे हमारी प्रगति नहीं हुई। लेकिन भक्तों का भाव क्या है? दूसरों की प्रगति को देखकर वो प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए द्वेष भावना से मुक्ति होती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत शांत है आप लोगों में, कहीं सो तो नहीं गए सब लोग? सब कुछ समझ में आ रहा है? हरि बोल भी इतना धीरे से कहा है आप लोगों ने, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं कि ये कौन से जगत में आ गए, कहाँ हैं, ये क्या चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? तो फिर ऐसा करते बंद करके लीला प्रारंभ करते हैं, ठीक है? सब लोग लीला सुनेंगे? ये सब ये थोड़ा कठिन लग रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ गया? फिर आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया? आज एक दरअसल हमने सोचा था दामोदर लीला प्रारंभ करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि यही विषय अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। समय मिला तो दामोदर लीला प्रारंभ होगी, नहीं तो फिर अगले शुक्रवार को दामोदर लीला करेंगे, क्योंकि दामोदर लीला भी बड़ी रोचक है। पहले लीला का वर्णन कि कैसे लीला हुई, यशोदा माता का क्या भाव था, बड़ा सुंदर वर्णन इस लीला का हुआ है। एक एक वस्तु का वर्णन किया गया है इस लीला, यशोदा माता के बालों में लगे हुए फूलों का वर्णन किया है कि उनके क्या भाव हैं, उनके हाथ की जो चूड़ियां हैं उनके क्या भाव हैं, दूध जो उबल रहा है उसका क्या भाव है। ये बड़ा सुंदर वर्णन है इस लीला में, चिन्मय जगत का वर्णन। तो अगर आज हो सका तो करेंगे, नहीं तो फिर अगले शुक्रवार को। तो द्वेष भावना से मुक्ति मिल जाती है, निस्वार्थ भावना से भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमें भय क्यों रहता है, हमने बतलाया स्वार्थ के कारण व्यक्ति भयभीत रहता है, तो इसीलिए भय से मुक्ति। साथ ही साथ एक ऐसी भावना हृदय में आती है कि हम अपने आप को जो भी संपत्ति हमें मिली है, जो भी सुविधाएं हमें मिली हैं, उसको भगवान की मानकर अपने आप को केवल उसका एक रक्षक, एक वॉचमैन समझकर हम उसके लिए कार्य करते हैं। जैसे एक बैंक में कैशियर होता है या बैंक का वॉचमैन होता है, वो बाहर बंदूक लेकर खड़ा रहता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि रक्षा को केवल रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उससे ये अपेक्षा नहीं होती कि वो ही अंदर जाकर बंदूक दिखाकर पैसे निकाल ले। उसका कार्य है रक्षा करना, क्योंकि ये संपत्ति किसी और की है। लेकिन सोचिए कि एक दिन अचानक उसके मन में आए, अरे मेरे हाथ में बंदूक है, मैं अंदर जाता हूं, मैं ही लूट लेता हूं बैंक, और वो लूट ले, तो क्या होगा? सब कुछ गलत हो जाएगा ना, सही तो नहीं है, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसी तरह जीव ने किया है, भगवान ने संपत्ति दी, उसको बाहर खड़ा किया बंदूक लेकर कि तुम खड़े रहो, इसकी रक्षा करो, ये संपत्ति मेरी है। लेकिन अचानक जीव के हृदय में आया कि अरे इतनी बड़ी संपत्ति कैसे किसी और की हो सकती है, मैं ही कब्जा कर लेता हूं। तो फिर बंदूक लेकर अंदर घुस गया, पाप किया, और फिर वो पाप में इतना रत हो गया कि फिर वो भूल गया कि ये संपत्ति तो मैंने किसी और की चुराई है। तो इसी कारण ये भय हमेशा रहता है और संपत्ति के रक्षक के रूप में हम कार्य नहीं कर पाते। लेकिन निस्वार्थ भावना, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जानना कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ है ही नहीं, तो स्वार्थ कैसा? हमारा स्वार्थ कब आता है? जब हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, तब स्वार्थ आता है। लेकिन मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ कृष्ण का है, मैं तो केवल एक रक्षक हूं, भगवान ने मुझे एक सेवा दी है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में मैं इतने रुपए दूंगा, उसको संभाल कर रखना, जब कोई भक्त आएंगे तो उनको दे देना सेवा के लिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अपने भोग पर लगा रहा हूं, अपने भोग की सुविधाओं को बढ़ा रहा हूं। तो ये इस समान है कि मैं बंदूक लेकर रक्षक होते हुए भक्षक बनने का कार्य कर रहा हूं। तो इसीलिए निस्वार्थ भावना से हम ये जान सकते हैं कि हम संपत्ति के रक्षक हैं, और फिर हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है। जब तक व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं आता गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तब तक भक्त या व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। कृतज्ञता ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ये जानना चाहिए कृष्ण ने क्या दिया है हमें, वैष्णवों ने क्या दिया है हमें, हमारी धरोहर जो हमें मिली है वैष्णवों से वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आज हम कितने कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद के प्रति, और कैसे इस कृतज्ञता को दिखलाते हैं। आप लोग आज जाकर कल एक छोटा सा लेख लिखिएगा, ये लिखिए कि आप कितने कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद के प्रति और क्यों हैं, और उस कृतज्ञता को दर्शाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और देखिए आप जानेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए जो किया है, जिस कार्य को किया है, उसको हम केवल समझे भी नहीं हैं अभी तक। कुछ कृतज्ञता दर्शाना या उनके लिए कुछ करना वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी तक हम इस बात को ही नहीं समझे कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है, हमें क्या दिया है। अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति के बल से उन्होंने आध्यात्मिक जगत को प्रकट किया है इस भौतिक जगत में, इस कलयुग में, और रोक दिया है कलयुग को, लेकिन हम लोग इसको समझे नहीं। ये बड़ी बातें हैं हमारे लिए, प्रभुपाद ने कलयुग को रोक दिया, हाँ सुनने में अच्छा लगता है, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, लेकिन इसको समझना चाहिए, अतः कृतज्ञता का भाव आएगा। तो जानिए कि श्री प्रभुपाद ने क्या किया है हमारे लिए, केवल आंदोलन में आ जाने से, केवल जप कर लेने से, केवल दीक्षा ले लेने से हम कृतज्ञता नहीं दर्शाते हैं। हम किस भाव से ये कार्य कर रहे हैं, किस भाव से जप कर रहे हैं, किस भाव से श्रील प्रभुपाद के दिए हुए निर्देशों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी कृतज्ञता है। हम जाने कि श्रील प्रभुपाद ने कितना कष्ट लिया है हम सबके लिए, रात रात को लिखना ग्रंथों को, कितने लोगों ने इन ग्रंथों को पढ़ा है, इतने सारे प्रवचन श्रील प्रभुपाद ने दिए, कितने लोगों ने उनके प्रवचन को सुना है। हफ्ते में एक बार हम लोग यहां श्रील प्रभुपाद के प्रवचन लगाते हैं, कितने लोग आते हैं सुनने के लिए। कोई वरिष्ठ भक्त आए तो 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद हर हफ्ते देते हैं लेकिन कोई नहीं आता, क्यों? यह हमारी कृतज्ञता है श्रील प्रभुपाद के प्रति कि वो बोल रहे हैं और हम सुनने तक के लिए नहीं आते, फिर हम कहते हैं जय प्रभुपाद। माफ कीजिएगा हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। श्रील प्रभुपाद ने, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, कि एक ऐसा घर बनाया है कि जिसमें हर कोई रह सकता है, हर एक के लिए स्थान है, लेकिन हम लोग कितनी बार प्रयास करते हैं कि इसको एक घर माने, इसको एक परिवार माने। हम लोग आपस में लड़ते हैं, मतभेद हैं एक दूसरे के प्रति। हम लोग दूसरों से क्या लड़ेंगे, हम लोग दूसरों को क्या एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जब हम अपने में ही इतने सारे मतभेदों को लेकर चलते हैं। हर एक में मतभेद है, हर भक्त एक दूसरे भक्त के प्रति कुछ मतभेद रखता है। किसी को किसी की स्थिति से मतभेद है, किसी को द्वेष है, कुछ ना कुछ है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप अपना प्रेम मेरी ओर दिखाना चाहते हैं, अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, तो आपस में सहयोग से रहिए। हम में से कितने लोग प्रभुपाद की इस बात को अपने हृदय में रखते हैं कि हम सहयोग से रहना चाहते हैं, हम द्वेष नहीं करना चाहते हैं। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद ये अच्छा है, लेकिन द्वेष नहीं होना चाहिए। मतभेद ठीक है, हमारे मत आपके मत से अलग होंगे क्योंकि हम अलग अलग जीवात्माएं हैं, हम अलग हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद ने जो निर्देश हमें दिए हैं उसका हम कितना पालन करते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, इसको केवल एक प्रवचन मत मानिए, जाइए घर पर लिखिए एक किताब उठाकर कि आपने श्रील प्रभुपाद की द्वारा की गए कार्यों को कितना समझा, कि श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है। और उसके लिए हम कितने कृतज्ञ हैं, हम नहीं हैं। आप जानेंगे हम नहीं, इसलिए हम जानते हैं आप में से ज्यादा लोग इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे हम, कुछ है ही नहीं। खास करके हमारे लिए, अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ये लिखने के लिए कि हमने शिला प्रभुपाद के लिए कुछ किया। क्या कृतज्ञता है, क्या कृतज्ञता दिखलाई है हमने शिला प्रभुपाद के लिए? हमारे पास तो कुछ नहीं है विशेष करके लिखने के लिए। तो इसीलिए ये कृतज्ञता का भाव तब आता है जब हम निस्वार्थ बनते हैं, अपने स्वार्थ को त्यागते हैं। और ये बड़ा आवश्यक है, परंपरा के प्रति कृतज्ञता, श्रील प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति कृतज्ञता। और उसके लिए समझना होगा कि वो हमें क्या दे रहे हैं। वो हमें एक ऐसा अवसर दे रहे हैं जो लाखों करोड़ों जीवन में भी हमें नहीं मिला और ना मिलेगा। ये आप जान लीजिए, ये एक ही अवसर है, पहला और अंतिम अवसर, जहां श्रील प्रभुपाद ने इतनी सरलता से भगवत धाम के द्वार खोल दिए हैं। आगे नहीं मिलेगा। अगर इस अवसर को छोड़ दिया, इसका लाभ नहीं लिया, तब पता नहीं कितने जन्मों बाद फिर किसी शुद्ध भक्त की कृपा हमारे ऊपर होगी। जैसे हमने बताया, कलयुग को रोक दिया है प्रभुपाद ने अगले 10,000 वर्षों तक, लेकिन फिर उसके बाद इस्कॉन नहीं होगा। एक बार एक भक्त ने शिला प्रभुपाद से पूछा कि शिला प्रभुपाद, 10,000 साल बाद ऐसा बताया गया है कि ये भक्त नहीं होंगे, तो क्या इस्कॉन भी नहीं होगा? तो शिला प्रभुपाद ने कहा, नहीं, 10,000 साल बाद इस्कॉन नहीं होगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि जितने भी अनुयायी हैं वो सब कृष्ण के साथ ऊपर गोलोक में होंगे, कोई यहां नहीं होगा। तो देखिए, ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि जो भी इस आंदोलन में आएगा, आज नहीं तो कल 10,000 वर्षों के अंदर अंदर गोलोक जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, क्योंकि वो कोई इस्कॉन यहां नहीं होगा, फिर इस्कॉन गोलोक में होगा, सारे भक्त वहां होंगे। तो इस कृपा को समझना, उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा स्वार्थ क्या है, असली स्वार्थ, और फिर हम इस कृतज्ञता के भाव को प्रकट कर पाएंगे। हम आपसे फिर से माफी चाहते हैं अगर हमने बोलने में कुछ ज्यादा बोल दिया हो, आप लोगों को अगर हृदय में कुछ लगा हो। कृष्ण और गुरु की कृपा को समझना, जिसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कृतज्ञता का भाव नहीं है क्योंकि कृष्ण और गुरु की कृपा को हम समझे नहीं है कि कैसी कृपा गुरु हमारे ऊपर करते हैं। हम लोग केवल सुनते हैं, आप में से कई भक्त सालों से इसको सुन रहे हैं कि हम बद्ध हैं, हम पापी हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, गुरु की कृपा है, हमें शुद्ध होना है बस। लेकिन ये होना है मगर कब होंगे? ऐसा ना हो जाए कि हम जीवन भर केवल जिस चीज के लिए प्रयास करते रहें वो हमें कभी मिले ही नहीं, केवल प्रयास। जैसे भौतिक जगत में लोग सुख पाने का प्रयास करते हैं, जीवन भर कष्ट लेते हैं, जीवन के अंत तक कष्ट करते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि हे महोदय, आपको क्या लाभ हुआ जीवन के अंत तक केवल कष्ट? किस लिए कष्ट? सुख पाने के लिए, और सुख तो रह गया, व्यक्ति मर गया। तो ऐसे प्रयास, इसको प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र बतलाते हैं, श्रम एव ही केवलम। अब ये श्रम एव ही केवलम, ये बाहरी दृष्टि से ठीक है, भौतिक दृष्टि से ठीक है कि भौतिक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, केवल अपने शरीर के लिए देहात्म बुद्धि पर रहता है, शरीर के लिए कार्य करता है, वो श्रम एव ही केवलम। भक्तों के लिए श्रम एव क्या है? भक्तों के लिए कैसा श्रम है? अगर हम भक्ति मार्ग में आए, हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है, गुरु और कृष्ण की कृपा को समझा नहीं है, और उस कृपा को समझकर उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम। आप जप कीजिए, आप मंदिर आइए, आप मंगल आरती आइए, श्रम एव ही केवलम। आपको ये प्रश्न कर सकता है, अरे आप लोग तो ये कहते हैं कि जप करना चाहिए, मंगल आरती आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, फिर ये कैसे श्रम है? ये श्रम है क्योंकि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हां लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम लेने का कोई लाभ ही नहीं होगा, लाभ मिलेगा, आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि पाश्चात्य देश में लोग हुए हैं जो भक्ति नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन देखिए उनको सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, या कोई बहुत प्रसिद्ध गुंडा है। तो एक भक्त पूछ रहे थे आज हमसे कि ऐसा व्यक्ति को ऐसे सब कैसे मिल जाता है, वो इतना बड़ा हो गया है, जहां भी जाता है लोग उसको सलाम करते हैं, बहुत पैसा है। तो क्योंकि अपने पिछले जन्म में उसने भगवान से ये मांगा था, जैसे हम जप कर रहे हैं और जप करते करते मांगे कि देखिए पाश्चात्य देश के लोग कितने सुंदर हैं, कितना धन है उनके पास, कितनी सुविधाएं हैं। ऑफकोर्स है नहीं ऐसा कुछ, खोखला है जीवन उनका, ये तो बाहरी दिखावा है केवल, जिसको लीपा पोती बोलते हैं। आप ये शब्द जानते हैं, लीपा पोती? लीपा पोती मतलब जैसे कोई बहुत बूढ़ा हो गया है लेकिन फिर भी यंग युवा दिखना चाहता है, तो कुछ क्रीम व्रीम लगाकर, कुछ ऐसे पदार्थों को लगाकर अपने आप को युवा दिखलाए। तो दिखने में हो सकता है कि देखने से लगे कि अरे ये युवक है, लेकिन है नहीं, अंदर खोखला है, शरीर क्या है। तो इसी तरह वहां का जीवन है, सुख सुविधाएं बाहरी हैं, जीवन खोखला है, खाली है, कुछ नहीं है, भावना शून्य है, केवल भोग प्रवृत्ति। तो ये मांगा था उन्होंने भक्ति करते हुए, जप करते हुए। तो इसलिए घबराना चाहिए हम सबको, जप करते समय भगवान से क्या मांगे, भक्ति करते हुए भगवान से क्या मांगे, घबराना चाहिए, डरना चाहिए कि अगर आपने मांग लिया कि हे भगवान मैं देख रहा हूं उस व्यक्ति के पास बहुत धन है, मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा धन दे दीजिए, हो सकता है भगवान इस जन्म में ना दे लेकिन अगले जन्म में बहुत धन दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। तो इसीलिए भगवान का नाम लेने का लाभ है, लेकिन असली लाभ नहीं है। असली लाभ कब है? जब हम भावपूर्ण भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान कौन है, हम लोगों ने बताया था, भगवान कौन है? भावग्राही हैं, भावग्राही हैं। तो हमें भारवाही से सारग्राही बनना है, और इसलिए हम लोगों को कृष्ण और गुरु की कृपा को समझना चाहिए। बहुत बड़ा विषय है, इस पर अगर चर्चा प्रारंभ करें तो कई दिनों तक इस पर कर सकते हैं, लेकिन इसका सार ये है कि हमें गुरु और कृष्ण की कृपा को समझना, अर्थात कैसे समझना है, क्या है गुरु और कृष्ण की कृपा। क्या उन्होंने ये कृपा की है कि हमें एक शरीर दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है? नहीं, गुरु और कृष्ण की कृपा ये है कि उन्होंने हमें एक अवसर दिया है कि हम जिस स्थिति में भी हैं, जहां भी हैं, वहां से भक्ति कर सकें। योग्यता नहीं है हमारी, उन्होंने हमें योग्य बनाया। श्रील प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि प्रभुपाद हमारी क्या योग्यता है कि हम भक्ति कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा आपकी कोई योग्यता नहीं, मैंने आपको योग्य बनाया। और यह सत्य है, ये कृपा है गुरु और कृष्ण की कि वो हमें योग्य बनाते हैं भक्ति की, भक्ति के लिए, और एक ऐसा अवसर, स्वर्ण अवसर देते हैं, अनमोल अवसर देते हैं। स्वर्ण भी नहीं कहना चाहिए, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल अवसर है ये जो हम भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए इस कृपा को समझना चाहिए। तो निस्वार्थ भावना से ये फल होता है, और जब तक हम निस्वार्थ नहीं है हम नहीं समझ सकते इस कृपा को। तो हम कृष्ण और गुरु की कृपा को समझते हैं। तो ये निस्वार्थ भावना को बड़े संक्षेप में हमने बतलाया है कि निस्वार्थ भावना क्या है। अर्थात सबसे पहले, जैसे हम साधारण तौर से जानते हैं, हमने उस परिभाषा को नहीं लिया कि साधारण परिभाषा है, निस्वार्थ मतलब दूसरों के लिए कार्य करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, ये ठीक है, लेकिन क्यों नहीं करना और उससे क्या लाभ होता है, ये चर्चा हम लोगों ने की। और जब तक हम निस्वार्थ भावना में नहीं आते हैं हम नम्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति कभी भी नम्रता, असली नम्रता का प्रदर्शन, बाहरी नम्रता का प्रदर्शन कर सकता है लेकिन असली नम्रता का प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसीलिए निस्वार्थी होना बड़ा आवश्यक है और निस्वार्थ भावना में रहना यह भी आवश्यक है। तो आइए दूसरा गुण वैष्णवों का, नम्रता, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करें। हम प्रयास करेंगे चर्चा को बड़ा संक्षेप में करने के लिए ताकि आज ये विषय समाप्त हो सके और फिर हम लोग अगले शुक्रवार को दामोदर लीला प्रारंभ कर सकें। तो नम्रता का क्या अर्थ है, क्यों नम्रता भक्त के हृदय में होनी चाहिए, सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है अगर व्यक्ति नम्र है तो राधा कृष्ण के प्रेम माधुर्य तथा महानता को स्थान दे सकता है। अगर नम्र नहीं है तब फिर कैसा प्रेम, कैसी महानता, क्योंकि नम्र व्यक्ति ही केवल अपने आप को तुच्छ मान सकता है। दूसरा व्यक्ति जो नम्र नहीं है वो तो अहंकार है, तृणावर्त, ऊंचा जाएगा, फिर वो अपने आप को नम्र नहीं बनाएगा तब कैसे राधा कृष्ण का प्रेम उसके हृदय में आएगा, कैसे उनका वो माधुर्य भाव उसके हृदय में आएगा, कैसे वो उनकी महानता को समझेगा। इसीलिए हमें अपने हृदय में ये नम्रता का भाव लाना चाहिए। ये नम्रता का भाव आता है जब हम अपने हृदय को कृष्ण में लगाते हैं। मैया सक्त मनः पार्थ, वो बताते हैं कि हे पार्थ तुम मुझ में अपने मन को लगाओ। मई आसक्त, अगर आसक्ति लगानी है तो किस में लगाओ, मुझ में लगाओ, कृष्ण में लगाओ। और जब व्यक्ति कृष्ण में आसक्ति लगाता है तो हृदय में नम्रता बढ़ती है। लेकिन नम्रता ये बहुत आवश्यक है, निस्वार्थी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए व्यक्ति को, वैष्णव को। तो नम्रता से सबसे पहला हमें लाभ मिलता है, इसका अर्थ होता है कि हम राधा कृष्ण के प्रेम को, उनके माधुर्य को, उनकी महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जैसे कृष्ण ये माखन चोरी करते हैं तो हम चाहते हैं कृष्ण हमारा हृदय चुरा लें, क्योंकि हमारे हृदय में है क्या, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, लोभ, यही तो चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कृष्ण इसको चुरा ले, ले जाए। तो कृष्ण कोई ऐसी चीज नहीं चुराते जो बहुत सख्त है। हमारा हृदय तो पत्थर है, कृष्ण पत्थर चुरा के क्या करेंगे। कृष्ण को तो माखन पसंद है और माखन बड़ा सॉफ्ट होता है, नम्र होता है। तो इसलिए अगर अपने हृदय में नम्रता लाएंगे तो कृष्ण भागे भागे आएंगे इसको चुराने के लिए, बुलाना नहीं पड़ेगा। अगर आप छुपाओगे भी तो भी कृष्ण आके चुरा लेंगे। गोपियां मक्खन को छुपा दिया करती थी, ऊंचे टांग दिया करती थी, कृष्ण आए नहीं, लेकिन कृष्ण आ जाते थे, चुरा लिया करते थे। तो अपने हृदय को भी इसी तरह नम्र बनाना है ताकि राधा कृष्ण का ये प्रेम हमारे हृदय में आ सके। नम्रता का अर्थ है वैष्णव आचार्य द्वारा प्रदान की गई संपदा के महत्व को समझना। यह हमारी नम्रता जब हृदय में आएगी तब हम वैष्णव आचार्यों ने जो संपदा हमें प्रदान की है, जो धरोहर हमें दी है, उसके महत्व को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। शास्त्रों की आराधना व ध्यान पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। एक नम्र व्यक्ति ही शास्त्रों की आराधना कर सकता है या उसका अध्ययन कर सकता है बड़े ध्यान पूर्वक, क्योंकि वो नम्र भाव से उनको समझने का प्रयास करता है तब कृष्ण उसके अर्थ को उसके हृदय में प्रकट कराते हैं। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येत कथितम हि अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। जो ऐसे महात्मा हैं जो अपने हृदय को नम्र बनाते हैं, गुरु की शरण जाते हैं बड़े नम्र भाव से, तद विद्धि प्रणिपातेन, बहुत नम्रता से शरण जाते हैं, समर्पण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान शास्त्रों के ज्ञान को उसके हृदय में प्रकट कराते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, उन्होंने एक भक्त से कहा जिसको भगवद गीता पकड़नी भी नहीं आती थी ठीक से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने भगवद गीता के सार को समझा है। क्यों कहा? क्योंकि उसकी भक्ति को देखकर, उसके भाव को देखकर, उसकी नम्रता को देखकर और गुरु के प्रति समर्पण को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवद गीता का सार उसके हृदय में प्रकट कराया। तो इसीलिए हम इस चीज को समझ सकेंगे। नम्रता का अर्थ है दूसरों की प्रगति को देखकर प्रसन्नता व उनकी विफलताओं पर दुख प्रकट करना। अगर हम नम्र नहीं हैं तो हमें ये होगा नहीं, दूसरों की विफलताओं पर दुख नहीं होगा और आगे अगर वो बढ़ रहे हैं तो हम प्रसन्न नहीं होंगे। निर्भयता, जब तक व्यक्ति निस्वार्थ नहीं है, नम्र नहीं है, वो निर्भय नहीं हो सकता। निर्भयता का क्या अर्थ है? निर्भयता का अर्थ है कि हम भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार हैं, और इस समर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है निर्भयता। भक्त को निर्भय होना चाहिए, लेकिन निर्भय होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर बाजार में चले जाएं और हर एक को मारें और कहें हम निर्भय हैं, हमें कोई भय नहीं है, हम किसी कानून को नहीं माने और कहें हम निर्भय हैं। नहीं, निर्भयता का अर्थ ये नहीं है। निर्भयता का अर्थ है कि हम पूर्ण समर्पण के लिए तैयार रहें, कोई भय नहीं हो। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, डरो मत, भय मत करो, निर्भय होकर समर्पण करो। तो निर्भय जब व्यक्ति रहता है तब वो भगवान को समर्पण कर सकता है, और निर्भय भक्त सत्य का हर स्थिति में रक्षण कर सकता है। कैसे करता है हर स्थिति में? अर्थात वो डरता नहीं है शास्त्रों के आधार पर सत्य को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। कई ऐसे आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद के पहले भी, आचार्य या भक्त हुए या साधु संत हुए, जो चाहते थे सत्य को प्रस्तुत करना, कृष्ण को भगवान के रूप में प्रस्तुत करना, लेकिन थोड़ा सा भय था, लोग अगर इसको स्वीकारेंगे नहीं तो क्या होगा। तो थोड़ा बहुत उन्होंने घुमा फिरा कर कहा, ठीक से नहीं कहा, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बड़ी निर्भयता से हर स्थान पर शुरुआत से यही कहा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कभी भी उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं कही। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बना रहे थे, भक्तों ने उन्हें कहा कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बनाइए, क्योंकि हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे इससे। श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, अगर मैंने ये बनाया तो आगे चलकर भक्तों में भ्रांतियां फैलेंगी कि गॉड कौन है, और फिर ये सोसाइटी, ये जो समाज है, ये बिखर जाएगा। क्योंकि गॉड इस शब्द की अलग अलग परिभाषाएं होंगी, इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो बहुत पहले से उन्होंने स्पष्ट किया कि वो निर्भय हैं, किसी भय से, किसी लाभ की कामना से वो सत्य को छुपाने वाले नहीं हैं। और देखिए अपने प्रवचनों में, अपने वार्ताओं में कितना स्पष्ट बात करते हैं श्रील प्रभुपाद, कोई भय नहीं। कोई अगर उनसे मिलने आया तो ऐसा नहीं कि वो घबरा कर कि अरे बड़ा व्यक्ति है, अगर मैंने इसको कृष्ण के बारे में बताया तो ये फिर से नहीं आएगा या दान नहीं देगा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बस ये निर्भयता है। और ऐसी निर्भयता व्यक्ति को अपने हृदय में लानी चाहिए। दृढ़ता से आचार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अपनी परंपरा के प्रति हमें चेस्टिटी होनी चाहिए। जैसे एक सती होती है, उसके लिए अपने पति के अलावा और कोई भी चीज मायने नहीं रखती है, तो ऐसा भाव, ऐसी चेस्टिटी हमें अपनी परंपरा के प्रति होनी चाहिए, आचार्यों के प्रति होनी चाहिए, और निर्भय रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कोई आकर कहेगा, अरे आपके संप्रदाय में ये कमियां हैं, कोई बात नहीं, ये कमियां हैं, ये आप कहते हैं, लेकिन हमें आचार्यों ने ये समझाया। तो आचार्यों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए बड़ी दृढ़ता से, श्रील प्रभुपाद ने किया। पूर्व सारे आचार्यों के जितनी भी व्याख्याएं थे, जितनी भी टिप्पणियां थी, उनके आधार पर प्रभुपाद ने उनका प्रतिनिधित्व किया, और एक ऐसी परंपरा को उन्होंने स्थापित किया या पुनः जागृत किया जो प्रायः लुप्त हो रही थी। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय लुप्त कैसे हो रहा था? अपसंप्रदाय बन रहे थे, लोग अपनी अपनी दर्शनों को प्रस्तुत कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के नाम पर, नित्यानंद प्रभु के नाम पर कई ऐसे संप्रदाय उत्पन्न हो गए जिन्होंने जो असली शिक्षाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की उनको त्याग दिया और एक ऐसा मार्ग लिया जो इंद्रिय भोग का मार्ग बना। तो ऐसे मार्गों को हमें नहीं जाना चाहिए, हमें अपने आचार्य, अपनी परंपरा का बड़ी दृढ़ता से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति एक योद्धा होता है। कैसा योद्धा? सर्वश्रेष्ठ योद्धा। और वो लड़ता कहां है? क्योंकि योद्धा है तो उसको लड़ना होगा, तो वो चेतना की सूक्ष्म युद्ध भूमि में लड़ता है। आध्यात्मिक स्तर का योद्धा है वो। सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक योद्धा कौन है? जो चेतना की सूक्ष्म युद्ध भूमि में लड़ता है, युद्ध करता है। लेकिन उसके शस्त्र क्या है? किससे लड़ता है? करुणा, करुणा से लड़ता है, सत्य से लड़ता है, वह प्रेम से लड़ता है। ये शस्त्र हैं। दरअसल करुणा ये भगवान और भगवान के भक्तों का अति विशिष्ट ये लक्षण है। आचार्य तो इतना भी कहते हैं कि भगवान को करुणामयी क्यों कहते हैं। एक आचार्य ने इस पर टिप्पणी की है कि भगवान को करुणामयी क्यों कहते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान को करुणामयी इसलिए कहा जाता है कि भगवान का शरीर, जैसे हमारा शरीर किस चीज से बना है, पंच महाभूत हैं, हड्डी है, खून है, लेकिन भगवान के शरीर में ये सब नहीं है। भगवान का शरीर में केवल करुणा है, इसीलिए उन्हें करुणामयी कहते हैं, केवल करुणा। ये भगवान का अस्तित्व है। अर्थात अगर हम कहें कि भगवान कौन है तो वो करुणा है। सबसे ज्यादा करुणा भगवान दर्शाते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उन लोगों पर तो करुणा करता है जो उनके पास आते हैं, लेकिन उन पर भी करुणा करता है जो उससे दूर जाते हैं, जो उनको नकार देते हैं, जो उनके अस्तित्व को नहीं मानते, उन पर भी करुणा करते हैं भगवान, जो उनका विरोध करते हैं, उनके सामने खड़े होकर उनके ऊपर तीर चलाते हैं, भगवान उनको भी मुक्त करते हैं, उनको भी आध्यात्मिक जगत ले जाते हैं। ये करुणा है, इसीलिए भगवान को करुणामयी कहते हैं। करुणा से भरे हुए हैं, करुणामय। तो ऐसी चीजों को ये एक योद्धा के रूप में समझना होता, करुणा के शस्त्र से, सत्य के शस्त्र से और प्रेम के शस्त्र से हमें ये युद्ध लड़ना होता है, आध्यात्मिक स्तर पर। और सूक्ष्म युद्ध भूमि है ये। सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि दिखती नहीं है, हमारी चेतना हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये संघर्ष चलता रहता है, मन में संघर्ष चलता है, ये युद्ध हमेशा चलेगा। कई बार लोग सोचते हैं अर्जुन को भगवान ने गीता में गीता का उपदेश दिया क्योंकि वो युद्ध कर रहा था, हम तो कभी युद्ध नहीं करेंगे। नहीं, हमें तो ये युद्ध हर क्षण करना है, और ऐसे युद्ध के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। और ऐसा निर्भय व्यक्ति अपने कार्य गुरु, साधु और शास्त्र केवल इस त्रिकोण में रहकर कर सकता है। जो गुरु ने कहा वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा कहा होना चाहिए, केवल इसी त्रिकोण में वो रहता है, इसके बाहर नहीं जाता। इसके बाहर जो कुछ भी है वो व्यर्थ है। अगर गुरु का आदेश नहीं है, शास्त्रों का निर्देश नहीं है और पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाएं नहीं है तो वो व्यर्थ है, उसको स्वीकारना नहीं चाहिए। तो हमें निर्भय कैसे होना चाहिए भक्ति मार्ग में? पहली चीज है तो इन सबको स्वीकारना, लेकिन दूसरा हमें निर्भय होना चाहिए अपने अंदर जो हमारी कमियां हैं उनको स्वीकारने के लिए। हमारे सबसे बड़ा दोष यह है कि हम अपने अंदर की कमियों को स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि हमें भय लगता है कि हमने जाकर अगर किसी से कुछ कह दिया कि हमारे अंदर ये कमी है तो सोचेगा ये कैसा भक्त है, जब करता है और ऐसे भाव आते हैं मन में, बड़ा गलत है, ये तो भक्त नहीं। तो ये भय है। अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर के दोषों को हम स्वीकारते नहीं, क्योंकि हम निर्भय नहीं है। निर्भय होकर हम कह नहीं सकते कि मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर काम वासना है, मेरे अंदर लोभ है, मोह है, हम नहीं कह पाते। हम दिखावा करते हैं भक्ति का, हम दिखावा करते हैं कि हम बड़े महान भक्त हैं, लेकिन इन चीजों को प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि भय है, समाज का भय, अपने मान सम्मान के खो जाने का भय। निर्भय नहीं है हम लोग, निर्भय होकर अपनी गलतियों को सबके सामने नहीं कहते, छुपाते हैं। छुपाना क्यों है? क्योंकि भय है। तो इसलिए वैसे एक दृष्टि से जो भी चीजें हम छुपाते हैं मान लेना चाहिए कि वो पाप है। इसलिए निर्भय होकर हमें इन चीजों को स्वीकारना चाहिए। तो ये निर्भयता है, ये गुण है भक्तों के। अब ये गुण कैसे ला सकते हैं? चर्चा तो की हम लोगों ने कि व्यक्ति को निस्वार्थी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, लेकिन कैसे आ सकते हैं ये गुण? तो बताया जाता है कि ये गुण लाना कठिन ही नहीं, असंभव है। अब देखिए इतना बड़ा प्रवचन, ये तो बेकार हो गया। सारा प्रवचन ये था कि ये गुण लाइए और फिर अंत में बताया कि ये गुण आना असंभव है, तो सब बेकार हो गया, 2 घंटे बर्बाद, 1.5 घंटे। तो ये बताया जाता है, सही है कि ये कठिन ही नहीं असंभव है। कब तक? कब तक ये असंभव होगा आप लोग बताएंगे? जब तक इसे अपने बल पर प्राप्त करना चाहेंगे, जब तक हम ये सोचेंगे कि मैं अपने बल पर नम्र हो जाऊंगा, तो ये मैं आ गया तो नम्रता कहां रही? मैं निस्वार्थी बनूंगा, तो ये मैं आया तो नम्रता कहां बनी रही, या निस्वार्थ कैसे हुआ, मैं आ गया। तो जब तक हम इसे अपने बल पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तब तक ये असंभव है। इसीलिए बड़ा सुंदर भजन में बताते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया। मैंने निज बल, अपने बल के ऊपर भरोसा छोड़ दिया, निज बल प्रति भरसा छाड़िया, छोड़ दिया, कोई भरोसा नहीं है मुझे अपने बल पर। क्यों नहीं है? फिर किसके ऊपर है? आपके ऊपर। तो जब तक हम अपने ऊपर ये अपने बल पर इन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तब तक हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमें अपने बल पर घमंड, अहंकार, लेकिन कैसे करना चाहिए? निज बल प्रति छोड़ देना चाहिए। अपने निज बल के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं, केवल सब आपके ऊपर हमने आश्रित किया है, आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप जाने। ये समर्पण है कि हम आए कृष्ण से कहें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस बात को, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक क्षण में कोई भक्त शुद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है शुद्ध भक्त होने के लिए हमें कई जन्म लगेंगे, हमें कई जीवन लेने पड़ेंगे, कई योनियां लेनी पड़ेंगी। नहीं, एक क्षण में व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान के समक्ष आना, उनको दंडवत करना और उनसे कहना उठकर कि हे कृष्ण, आज तक मैं माया की सेवा कर रहा था, आज से मैं आपकी सेवा करूंगा। बस श्रील प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति शुद्ध हो गए। अब हम लोग सब ये कर सकते हैं, सही है ना? अभी जाएंगे तुरंत और भगवान के सामने कह सकते हैं, तो क्या हम शुद्ध हो जाएंगे? नहीं, जो कहें उसका पालन करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। ये प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमने कृष्ण से कहा कि आज से केवल आपकी सेवा, आज तक माया का दास था, आज से आपका दास, और इसका पालन करें, तब हम शुद्ध हैं। क्योंकि जो भी चीज कृष्ण से संबंधित है वो शुद्ध है। कृष्ण से संबंधित किसी भी चीज में दूषण नहीं आता। आत्मा भी शुद्ध है क्योंकि कृष्ण से संबंधित है, लेकिन फिर भी आत्मा पर आवरण पड़ा है क्योंकि वो आत्मा कृष्ण से विमुख हो गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि क्योंकि हम विमुख हो गए हैं कृष्ण से, कृष्ण बहिर्मुख, तो इसीलिए हमारे ऊपर माया झपट्टा मार के हमें ले लेती है। लेकिन अगर कृष्ण के साथ में रहें, कृष्ण की ओर चलें, कृष्ण के संपर्क में रहें, तो हमेशा शुद्ध रहेंगे। इसीलिए निज बल, अपने बल पर भरोसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते इस जगत में। क्या कर सकते हैं बताइए? कोई व्यक्ति सोचेगा मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा फिर मैं बड़ा शक्तिशाली हो जाऊंगा, और आजकल ये थोड़ा बहुत सत्य है कि जिसके पास धन है वही सबसे बड़ा रुपया। तो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सत्य है, पैसा जहां है वहां सब कुछ सही है। लेकिन पैसे से हम क्या कर सकते? कोई व्यक्ति मर रहा है, आप कितना भी पैसा दीजिए क्या उसको बचा सकते हैं? पैसा नहीं बचा सकता, तो क्या बल रहेगा? अपने बल पर क्या कर पाए इस जगत में? तो जब भौतिक जगत में हम अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते, भौतिक कार्य नहीं कर सकते, अरे अपने बल पर व्यक्ति अपने हाथ उठाकर ऐसे ये इतना भी नहीं उठा सकता है अपने बल से। बीमारी हो जाती है लोगों को, लकवा मार जाता है, हाथ हिलता नहीं है। कहां गया बल, कहां गया यश, कहां गया धन? हो सकता है लाखों करोड़ों रुपया हो व्यक्ति के पास, लेकिन क्या लाभ है? बहुत ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं। मोहम्मद अली बहुत बड़ा बॉक्सर था, जब उसने उसको विश्व का वो चैंपियन बन गया, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया, आई एम द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, यानी भगवान हो गया। सो आई एम द ग्रेटेस्ट। लेकिन आगे चलकर उस ग्रेटेस्ट की क्या हुई? उस शक्ति उसकी ऐसी हालत हो गई कि एक चाय का कप भी उससे उठता नहीं था। ये ग्रेटेस्ट है इस जगत के बड़े बड़े लोग। एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, हाँ, निक्सन, और दूसरे भी थे अभी हाल में हुए थे, रीगन, क्या नाम था उसका, बड़े प्रसिद्ध थे वो। वो तो प्रेसिडेंट बनने से पहले फिल्मों में काम करते थे शायद, है ना? सही बात है, फिल्मों में काम करने से वैसे ही व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, इसीलिए सब लोग भागते हैं सब कुछ छोड़कर। तो वो इतने ऊंचे पद तक चले गए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए और बड़े प्रसिद्ध हुए, सारे जगत में प्रसिद्ध थे। लेकिन अंत समय में उनकी क्या स्थिति हुई? हम ये बतला रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास बल हो शरीर का, जैसे मोहम्मद अली के पास था, तो क्या लाभ है? क्या नियंत्रण कर पाया वो? रीगन जो कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, यश मिला, क्या कर पाए? जीवन के अंत में उनको ऐसी बीमारी हुई कि वो अपनी पत्नी को भी याद नहीं रख पाते थे कि ये मेरी पत्नी है जो मेरे साथ में खड़ी है। उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, भूल जाते थे। हाँ नहीं, रोनाल्ड रीगन को भी हुआ था, रीगन को भी ये बीमारी थी और उन्होंने ऐसा लिखा भी था। अभी पता नहीं है कि नहीं है, हम है नहीं है। उनकी पत्नी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी उनको बीमारी हुई है। तो इस तरह से ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बड़े धनवान व्यक्ति हैं, बड़े बलवान व्यक्ति हैं, लेकिन क्या बल इनका कर सकता है भगवान की एक शक्ति के सामने। भगवान थोड़ा सा अंदर से परमात्मा घुमा देते हैं, बस स्विच ऑफ किया, राम नाम सत्य, फिर ध्यान आता है। जीवन भर लोगों को ध्यान नहीं आता कि राम का नाम सत्य है, लेकिन जब लेके जाते हैं तब सब बोलते हैं राम नाम सत्य। अरे अभी बोलने का क्या फायदा है, तो पहले बोलना चाहिए था। तो इस तरह से ये निज बल, जब तक हम अपने बल पर इसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तब तक ये असंभव रहेगा। इसीलिए भक्त सनेवास जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष, हम लोग गा रहे थे ना शुरुआत में कि ये भक्तों के चरणों में वास रहना चाहिए, बस यही एक हमारी आशा है। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, मेरी एक ही आशा है कि मैं रूप और रघुनाथ अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों, शुद्ध भक्तों, आचार्यों के चरणों में मुझे स्थान मिले, बस जन्म में जन्म में होए यही अभिलाष, हर जन्म में मेरी यही अभिलाष, फिर मुझे मुक्ति की भी कामना नहीं है। इसीलिए जन्म में जन्म में क्यों भक्त कहते हैं जन्म में जन्म में, क्यों नहीं कहते मुझे मुक्त कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है मुक्ति की, जन्म में जन्म में होए यही अभिलाष। अगर भक्त यहां है, भक्तों के चरणों में मेरा स्थान है, तो फिर यही मेरे लिए आध्यात्मिक जगत है, मुक्ति की क्यों कामना करूं मैं। तो ऐसी चीजें ये हमें जानना चाहिए कि हमारा बल कुछ नहीं है। हम अगर भक्ति में हैं, हम अगर जप कर रहे हैं, हम अगर और भक्ति के मार्ग का पालन कर रहे हैं, कुछ ग्रंथों से सुन रहे हैं, कृष्ण लीला को सुन रहे हैं, कृष्ण कथा को समझ पा रहे हैं, तो केवल वैष्णवों की कृपा। अगर वैष्णवों की कृपा नहीं है हमारे ऊपर तब हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ जीरो है। और वैष्णव भी इतने दयालु होते हैं कि वह हम पर कृपा करने के लिए बार बार स्वयं चलकर आते हैं। आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, इस वर्ष वैसे हम ये कल अनाउंसमेंट करना चाहते थे लेकिन अभी आप लोग सब यहां पर ये विषय निकला है वैष्णवों की कृपा, तो इस वर्ष कृष्ण कथा जैसे हर वर्ष हम लोग करते हैं, कृष्ण कथा होती है जन्माष्टमी तक बलराम जयंती से, तो इस वर्ष की कृष्ण कथा हम थोड़ी सी पहले आरंभ करेंगे। वैसे हमने सोचा था कि हम 28 से प्रारंभ करेंगे, 28 को बलराम जयंती है, लेकिन इस वर्ष की कृष्ण कथा हम 24 से आरंभ कर रहे हैं। 24 तारीख की सुबह, 24 तारीख की शाम को, 25 तारीख की सुबह, 25 तारीख की शाम को, 26 तारीख की सुबह और 26 की दोपहर को, और हो सका तो 27 की सुबह ये कृष्ण कथा होगी। और ये कथा करने के लिए विशेष रूप से हिज ग्रेस देवामृत प्रभु यहां पर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों से उनसे कृष्ण कथा सुनी नहीं है, तो आज हमने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने स्वीकार किया है, तो वो यहां पर आएंगे। और जहां से उन्होंने छोड़ा था जब वो यहां से गए थे, अर्थात वेणु गीत उन्होंने पूर्ण किया था और उसके बाद गोपियों का वस्त्र हरण, और उसके बाद से वो कथा प्रारंभ करेंगे। तो इस वर्ष की कृष्ण कथा हिज ग्रेस देवामृत प्रभु के द्वारा होगी। ठीक है ना, आज का प्रवचन सफल हो गया ना। तो ऐसी कृपा हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को वैष्णवों के संग में रहना है, वैष्णवों के चरणों में रहना है। अगर हम वैष्णवों के चरणों में नहीं रहे तब फिर हमारे लिए कोई भी गति नहीं है, इस चीज को समझ लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा और विषय बाकी है, बहुत जल्दी उसको अगली बार खत्म करेंगे और अगले शुक्रवार को दामोदर लीला प्रारंभ करेंगे। तो शुक्रवार और शनिवार को दामोदर लीला होगी और फिर उसके बाद उसके अगले शुक्रवार और शनिवार कृष्ण कथा होगी। तो आप सबसे विनती है कि अगर आप लोग कोई अपने कार्यक्रम बना रहे हैं कहीं जाने के, तो कृपया करके 24 तारीख और 27 तारीख के बीच में कोई कार्यक्रम मत बनाइए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो किसी के कोई प्रश्न, लाइट्स ऑन कीजिएगा प्लीज, माइक देना।
हरे कृष्ण। आपने शील न बताया था, मतलब निस्वार्थ नम्रता निर्भयता, मगर निस्वार्थता में ही निर्भयता आ गया उसी में।
हाँ, निस्वार्थ भावना से निर्भयता आती है। हमने वही बताया कि जब तक व्यक्ति निस्वार्थ नहीं होगा, नम्र नहीं होगा, तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता। तो निर्भयता कैसी होनी चाहिए वो हम समझा रहे थे कि कैसे निस्वार्थ भावना से निर्भयता आती है, लेकिन कैसी निर्भयता इसका वर्णन हमने किया था कि कैसा होना चाहिए निर्भय, कि किस प्रकार अपनी परंपरा को, अपने सत्य को स्थापित करने के लिए व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए। तो इसलिए इस गुण को प्रकट होना चाहिए। पीछे माइक दीजिए। आपके लिए पहले और दूसरे दिन के नोट्स हमने तैयार किए हैं, तो आप लोग क्लास के बाद इसको ले सकते हैं, लेकिन केवल जो सब दिन आए हैं वही लोग लीजिएगा। आज जो आए हैं केवल उन लोगों के लिए नोट्स नहीं है। यस प्रभु।
प्रभु जी, आपने इसका भगवान करुणामय है, इस जगत में इतने सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, भगवान के अस्तित्व को भी नकारते हैं, और कई हैं जो भगवान को जानते भी नहीं, तो उन पर भगवान की इस तरह की डायरेक्ट करुणा इस तरह से प्रदर्शित।
वो जीवित है, यही भगवान की कृपा है।
जीवित है लेकिन वो भगवान को बिल्कुल नकार देते हैं।
हाँ,
तो वो कैसे समझते हैं?
अच्छा, भगवान
कैसे समझाया जाए? हाँ, कि भगवान करुणामय है।
अच्छा, आप बोल रहे हैं उनको कैसे समझाएं हम लोग कि भगवान करुणामय है, या हमें ऐसा लगा आप बोल रहे हैं कि उनके ऊपर भगवान की कैसी कृपा है? बल कृपा तो है, उनको कैसे समझाएं कि भगवान कृपामय हैं? ये प्रश्न कल भी माता जी ने पूछा था कि जो कृष्ण को नहीं मानते हैं उनको कैसे हमें समझाना चाहिए कृष्ण भगवान हैं। तो हमने बतलाया था कि जितना हो सके, यथासंभव जितनी हमारी शक्ति है, जितना हमारा ज्ञान है, उसके द्वारा जो हमने सुना है उसको हमें लोगों को बतलाना चाहिए कि कृष्ण की कैसी कृपा है। जैसे हम उनको समझा सकते हैं बड़े साधारण उदाहरण से कि भाई आप ठीक है भगवान को माने या ना माने, दरअसल क्या करना चाहिए, पहले व्यक्ति को आत्मा का विषय समझाना चाहिए। अगर वो आत्मा को मान लेता है तो भगवान को मानेगा। दूसरा, उन्हें बताना चाहिए कि आप जी रहे हैं, जीने के लिए आपको हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, ये कौन देता है? तो हो सकता है वो कहें कि कोई शक्ति देती है, उसको कहे ठीक है आप उस शक्ति को मानिए। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में हम ये प्रचार कर सकते हैं, लोगों को उनकी करुणा दिखला सकते हैं कि किस तरह से लोग जो उनके विरोध हैं, और शास्त्रों से उदाहरण, कृष्ण को तीर मार रहे थे वो लोग भी गोलोक चले गए, कृष्ण को जहर लगाकर अपने स्तन में दूध पिलाने आई पूतना को उन्होंने माता का स्थान दिया, तो फिर उनसे ज्यादा दयालु और कौन हो सकता। तो ऐसे कई उदाहरणों से, कई प्रैक्टिकल उदाहरणों से जो उनको इस जगत में दिखते हैं, और फिर थोड़े बहुत ज्ञान से हम उनको ये समझा सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ बोलिए।
जहाँ तक हम लोग अभी भक्तों के बीच में होते हैं, तो हम लोग निस्वार्थ भाव और नम्रता का प्रयोग कर सकते हैं,
प्रदर्शन
कर सकते हैं, तो इसमें हमें लाभ ही लाभ। लेकिन जब हम लोग बाहर इस भौतिक जगत में होते, अपने व्यापार में होते हैं, तब अगर हम लोग ये सब करने जाएं तो हमारा तुरंत अंतरी हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में बैलेंस कैसे बनाने के लिए, अगर हम वहां प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ आके हमें दूसरे तरह से अपने आप को यानी चेंज करना एक थोड़ा कठिन हो जाता है।
Prabhupada says, act as a lamb. when you are amongst devotees, and as a lion when you are amongst non-devotees. Prabhupada कहते हैं कि जब आप भक्तों के बीच में हैं तो आपको एक क्या बोलते हैं उसको, बकरे नहीं, उसका बच्चा क्या, मेमना, तो मेमने के समान होना चाहिए जब हम भक्तों के बीच में, वो छोटा सा रहता है एकदम, उसको हाथ लगाओ तो डर जाता है ऐसा, लेकिन जब भक्तों के बीच में है तो शेर के समान होना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दहाड़ा करते थे वो, अगर कोई उन्हें मायावादी मिल जाए तो उसको पकड़कर। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम अपने कार्यों में हैं, व्यवसाय में हैं, बाहर के लोगों के साथ में हैं, तो नम्रता का अर्थ समझना है। जैसे नारद मुनि ने एक सांप को कहा था कि भाई तुम नम्र हो जाओ, तो सांप नम्र हो गया, बच्चे पत्थर मार रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, सांप कुछ नहीं कर रहा, बेचारा परेशान हो गया, लहूलुहान हो गया। नारद मुनि ने आकर देखा, अरे ये क्या हालत हो गई, उन्हें आपने ही कहा था नम्र हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। तो नारद मुनि ने कहा था, अरे डसने को मना किया था लेकिन डराने को मना नहीं किया था। तो सांप को कहा कि तुम डरा सकते हो, डराने से ही लोग भाग जाएंगे। तो दरअसल नम्रता का भाव हमें हृदय में रखना चाहिए जो आवश्यक है बाहर करने के लिए। अफकोर्स ऐसा नहीं है कि व्यापार में धोखा देना आवश्यक है तो हम धोखा दे रहे हैं, चोरी करना आवश्यक है तो हम चोरी कर रहे हैं। कोई चोर कह सकता है मेरा व्यापार ही वही है, मेरा व्यवसाय है, तो मैं कैसे ना करूं। लेकिन जो आवश्यक है, जो उचित है, उन चीज़ों को करना चाहिए, उसमें हमें कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ऐसी कार्य भी नहीं होने चाहिए जो हमारी चेतना को दूषित करें। तो नम्रता का अर्थ ये है कि हम अपनी चेतना को बनाए रखें। जैसी चेतना हम यहां रखते हैं, चेतना आप एक रख सकते हैं, कार्यों में अंतर हो सकता है। चेतना एक रख के कार्य बार करना कोई फर्क नहीं है। जैसे आप ऑफिस में जाकर कार्य कर रहे हैं, आपको कई ऐसे कार्य करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना तो आप भगवान में लगाए रख सकते हैं। तो इसलिए चेतना को बचाना बहुत आवश्यक है। तो जब आप बाहर हो तभी भी आपकी चेतना वही रहनी चाहिए। कार्य बाहरी दृष्टि से हो सकता है अलग अलग लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आवश्यक है कार्य करने के लिए, जीविका चलाने के लिए या जीविका अर्जन करने के लिए, उतना हमें करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लोभ भी नहीं दिखाना चाहिए कि समझे हम जीविका अर्जन के नाम पर इतना लोभ कर रहे हैं, इतना लोभ कर रहे हैं कि फिर कोई कह रहे आप मंदिर ही नहीं आते, क्या बात है। नहीं प्रभु जी, मैं जीविका अर्जन में इतना बिजी हो गया कि मंदिर ही नहीं आ रहा, तो वो भी सही नहीं है। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए। मटीरियल लाइफ, प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त को, खास करके जो एक फैमिली में है, उनको मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। तो हमारा भौतिक जीवन ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बन जाएं, और ऐसा भी नहीं हो कि हम इतने तुकाराम जी की तरह अध्यात्मवादी बन जाएं कि वो सारी मिर्ची लेके जा रहा है, ले जाओ कोई बात नहीं तुम्हारे ही है। हम उस स्तर पर नहीं है, बनना चाहिए, तुकाराम जी की तरह बनना चाहिए, लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है जब तक, तब तक हमें थोड़ा बहुत बैलेंस करना होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? माता जी को दीजिएगा पीछे।
हरी बोल प्रभु, आपने आत्मा को ऐसा बताते हैं कि आत्मा बद्ध है, तो जब कि हम उस सच्चिदानंद भगवान के अंश होते हुए, जैसे कि वो समुद्र का आप उदाहरण देते, समुद्र का और समुद्र की एक बूंद में कुछ फर्क नहीं है, मैं तो ऐसे बद्ध आत्मा, आत्मा अगर बद्ध है तो ये तो शरीर के कारण बद्ध हुआ है ना।
हाँ जी,
वैसे तो वो बद्ध नहीं है। हाँ। तो उसको बद्ध क्यों बताते हैं?
बद्ध चेतना का अर्थ है, या बद्ध आत्मा, या बद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था कही जाती है, बद्ध आत्मा नहीं, आत्मा की यह अवस्था बद्ध है। तो बद्ध अवस्था का अर्थ यह है कि वैसे तो आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण पड़ गया है, और वो आवरण के कारण बद्ध हो गई है, बंध गई है, तीन गुणों में बंध गई है। तो अपने मूल रूप में वो शुद्ध है और वो हमेशा शुद्ध रहेगी, लेकिन जब उसके ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है, एक आवरण पड़ जाता है, जैसे उदाहरण के लिए ये घड़ी है, इस घड़ी को अगर किसी कपड़े से ढक दिया जाए तो घड़ी में कुछ अभी तक हुआ नहीं है, घड़ी वैसे के वैसे ही है, कोई दूषण नहीं है। लेकिन कपड़ा अगर गंदा है तो फिर वो घड़ी का जो आकार है वो बड़ा गंदा लगेगा, है ना। तो इसीलिए जो आकार हमारा अभी है, जो आवरण हमारे ऊपर अभी है, वो दूषित है, वो मल मल से भरा हुआ है, वो कलमश से भरा हुआ है। तो इस कारण से आत्मा शुद्ध होते हुए भी दूषित लगती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि आत्मा अपने आप को इस शरीर, ये शरीर मानती है। आइडेंटिफिकेशन के कारण, अपने आप को वो शरीर समझने के कारण ये आत्मा बद्ध हो जाती है। वैसे मुक्त है, लेकिन आत्मा आवरण पड़ने के कारण अपने आप को इन तीन गुणों में बांध लेती है। तो इसीलिए मूल रूप में आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, मगर आवरण पड़ जाने के कारण, ये भौतिक इच्छाओं का आवरण, कलमशों का आवरण, तीन गुणों का आवरण, और फिर इतना समय इस भौतिक जगत से संपर्क हमारा, जिस कारण से चेतना में दूषण आ गया है, और इसीलिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो शुद्धिकरण का अर्थ क्या है? अगर आत्मा शुद्ध है तो फिर क्यों शुद्धिकरण चाहिए? शुद्धिकरण का अर्थ है कि ये जो आवरण पड़ा हुआ है उसको केवल हटाना है, बस। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जप करने मात्र से ही आवरण हट जाएगा। तो जप करने से कैसे आवरण हट सकता है? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि जप करने से हम अपनी सोई हुई सुप्त चेतना को केवल जागृत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नई चेतना नहीं बना रहे हैं। तो सुप्त चेतना को जागृत करना मतलब वो शुद्ध चेतना है, अभी भी है हमारे हृदय में, वही चेतना, वही शुद्धता, लेकिन केवल एक ढक दिया गया है। तो उसको पुनः जागृत करना जप के द्वारा शुद्धिकरण की क्रिया कहलाती है। तो इसलिए ये सही है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा मुक्त है, लेकिन इस जगत में अपनी इच्छाओं के द्वारा बद्ध हो जाती है। जैसे कल हमने बतलाया था, यदृच्छया लोकमिमम, इस लोक, इस शरीर को प्राप्त किया है अपनी इच्छाओं के द्वारा, और हम लोग उसमें क्या करते हैं? कर्म भी भ्रमण, कर्मों के द्वारा भ्रमण करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ बोलिए। प्रश्न ऐसा है कि हमने बतलाया कि अपने जो दोष हैं वो दूसरों को बतलाने चाहिए। अफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हमें न्यूज़पेपर में छापने चाहिए, लेकिन किसी को, एक जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें किसी न किसी के समक्ष अपने हृदय को खोलना होता है, तभी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर किसी को बताते हैं तो वो और हमारी बढ़ाई करने लगता है कि अरे आप तो महान भक्त हैं, ये तो आपकी नम्रता है कि आप बोल रहे हैं, तो फिर और अहंकार बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बतलाते हैं कि जो भी आपकी स्तुति करता है वो आपका शत्रु है, उसका संग त्याग देना चाहिए, और जो आपका निंदा करता है उसको अपने निकट रखना चाहिए, वो आपका मित्र है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों के मध्य मत रहिए जो आपका गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों को अपने हृदय की बातें बतलाइए नहीं, क्योंकि हो सकता है वो भी हृदय से गुणगान नहीं कर रहे हों, केवल बाहरी तौर से, अरे प्रभु जी माता जी आप तो बड़े महान भक्त हैं, लेकिन हृदय से मुझे पता है आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चापलूस कहा जाता है। तो ऐसे चापलूसों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, वो हमारे शत्रु हैं, क्योंकि हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे भक्त को अपने हृदय की बात, इसलिए हमने कहा न्यूज़पेपर में नहीं छापना चाहिए, ऐसे भक्त को बतलाइए जो आपको सही मार्ग दिखला सके, ये आवश्यक है भक्ति में। इसको रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि हमें आदान प्रदान करना चाहिए, आख्यति और प्रच्छति, बताना चाहिए और सुनना चाहिए, गुह्यम आख्यति प्रच्छति। ठीक है, और कोई प्रश्न? कहते हैं कि ये जो सत्र, जो प्रयास हमने प्रारंभ किया है, थोड़ा बहुत ज्ञान जो हमने इधर उधर से लिया है, ये भी हमें, कोई हमारा ज्ञान नहीं है, ये कहीं से इधर से उधर से सुन लिया या ले लिया है, बस वही आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इसके द्वारा आप प्रयास करेंगे कि अपने हृदय को बदलें, अपनी दिनचर्या को बदलें, अपने जीवन को बदलें, और विशेष करके श्रील प्रभुपाद और आचार्यों के प्रति इस कृतज्ञता के भाव को लाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।